हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के इस प्राथमिक कोर्स के तीसरे सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पुनरावृत्ति के लिए, पहले सत्र में हमने जाना, चर्चा की भगवद गीता के ज्ञान की हम सभी के जीवन में नितांत आवश्यकता है। इसके बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है, ये चर्चा हमने की। और इसको जान लेने के बाद दूसरे सत्र में हमने देखा भगवद गीता को समझने का तरीका क्या है। एक आदर्श शिष्य के अंदर क्या गुण होने चाहिए और एक आदर्श गुरु के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो हमने देखा कि आदर्श शिष्य भगवद गीता का, जिनके पथ अनुसरण हमें करना चाहिए, वो कौन है। भगवद गीता को सबसे पहले, यहां जो भगवद गीता हमारे पास है 5000 वर्ष पूर्व जो भगवान ने सुनाई, किसको सुनाई, अर्जुन को सुनाई। तो आदर्श विद्यार्थी अर्जुन है, और उसी प्रकार के गुण यदि हम में होंगे तो हम आदर्श विद्यार्थी कहलाएंगे भगवद गीता के। और भगवद गीता को सुनाने वाले हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण। तो हमने कल चर्चा की कि यदि हम भगवद गीता समझना चाहते हैं, इसलिए हम यहां सम्मिलित हैं भगवद गीता के इस कोर्स के लिए, तो कौन कौन सी आधारभूत आवश्यकताएं हैं जो हम में होनी चाहिए, कि हमें समझना चाहिए कि ये ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान को समझने का तरीका है अवरोह पंथ। अवरोह पंथ, न कि आरोह पंथ, यानी कि भगवान के द्वारा ये ज्ञान दिया जाता है और भगवान की कृपा से ही हम इसको समझ सकते हैं। अपनी जड़ इंद्रियों से और अपनी जड़ बुद्धि से इस ज्ञान को कभी नहीं समझा जा सकता है। जैसा कि भौतिक ज्ञान को अपनी बुद्धि से समझते हैं, ये भगवद गीता का या शास्त्रों का ज्ञान जड़ बुद्धि से और जड़ इंद्रियों से ग्राह्य है, समझने योग्य नहीं है। इसके लिए जब स्वयं भगवान कृपा करते हैं, प्रकाशित करते हैं अपने को, तभी हम समझ सकते हैं भगवान को, इस सृष्टि को और इस ज्ञान को। फिर हमने देखा कि भगवान किसको ये ज्ञान देते हैं, अर्जुन को क्यों ये ज्ञान देते हैं, अर्जुन को ही क्यों चुनते हैं। वहां तो बहुत सारे बड़े बड़े पंडित हैं और महारथी हैं, दुर्योधन को नहीं चुनते हैं, अर्जुन को ही क्यों चुनते हैं ये ज्ञान। तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन तुम ही योग्य हो इस ज्ञान को समझने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ज्ञान मैं तुम्हें दूं। तो क्यों भगवान अर्जुन को चाहते हैं, भगवान बताते हैं क्योंकि तुम, क्यों अर्जुन में क्या विशेषता है, क्योंकि अर्जुन भगवान के क्या है, भक्त हैं, भक्त हैं। तो ये भगवद गीता कौन समझ सकता है, जो भगवान का भक्त हो। और जो भगवान का भक्त नहीं है, भले ही वो शास्त्रों में पंडित हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो और कुछ भी हो, लेकिन वो ये भगवद गीता के मर्म को नहीं समझ सकता। उसी प्रकार इस भगवद गीता को कौन समझा सकता है, भगवान श्री कृष्ण तो हमारे साथ सामने अर्जुन की तरह से, जैसे श्री कृष्ण से सीधा उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया, तो उस प्रकार से हमारा सामने भगवान श्री कृष्ण उस प्रकार से नहीं है। इसलिए हमें आवश्यकता है गुरु परंपरा में आए एक गुरु की, जो भगवान के प्रतिनिधि हो। जैसे भगवान ने अर्जुन को समझाया, उसी प्रकार भगवान के प्रतिनिधि जिन्हें गुरु कहते हैं, वो हमें ये ज्ञान दे सकते हैं जब हमारी सेवा से प्रसन्न हो, भगवान की सेवा करने की हमारे अंदर उत्कंठित इच्छा हो। तो फिर हमने देखा कि गुरु के लक्षण क्या क्या होने चाहिए। तो गुरु के अंदर शिष्य के सभी गुण तो होने ही चाहिए, उन्हें भी विश्वास होना चाहिए कि ये भगवद गीता कोई काल्पनिक नहीं है, वो खुद गुरु परंपरा में ज्ञान लिए हो और पूरी तरह से उनका जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ हो, वो कोई भगवद गीता को लेकर के धंधा नहीं कर रहे हो, पैसा कमाने का जरिया नहीं गुरु बनना या आध्यात्मिक ज्ञान देना, केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा, जिसने जीवन भगवान की सेवा में समर्पित किया है, ये कमाई का धंधे से जो व्यक्ति गुरु बनना प्रयास करता है वो गुरु नहीं बन सकता, ये हमने देखा। क्योंकि शास्त्रों का मर्म है कि हम भगवान के दास हैं, जिसने जीवन भगवान की सेवा मात्र समर्पित किया है वही वास्तव में भगवान का प्रतिनिधि हो सकता है। तो वो धंधे की तरह से कोई गुरु नहीं बन सकता, ये कोई गुरु जैसे एक डॉक्टर होता है, वकील होता है, ऐसे गुरु भी एक धंधा नहीं है, गुरु एक धंधा नहीं है। फिर हमने देखा गुरु को शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की वाणी जो शास्त्र है उसी को हमको बता रहा है, वो अपने मन से ना तो कुछ जोड़े ना तो कुछ हटाए, जो का त्यों जैसा उसने गुरु परंपरा में सीखा है वैसा का वैसा हमको प्रदान करे, वो व्यक्ति गुरु बन सकता है। फिर हमने देखा कौन कौन गुरु नहीं बन सकता, जो पैसे के पीछे हो, जन समुदाय को इकट्ठा करने के पीछे हो, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे हो, चमत्कार दिखा करके लोगों को आकर्षित करने के पीछे हो, जादू टोना करता हो, भौतिक सुख प्रदान करने के लिए मंत्र बेचता हो, ये सब व्यक्ति गुरु बनने लायक नहीं है। तो गुरु परंपरा भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ हुई, चार प्रामाणिक गुरु परंपरा का जिक्र हमने कल किया, पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, इन चारों संप्रदायों में से आने वाले गुरु जो पूरी तरह से शास्त्र में निष्ठा होकर के भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हों वही गुरु बनने लायक हैं। तो इस प्रकार से कल डिस्कशन करके हम अभी समझे हैं कि योग्यता क्या है और हम अपने अंदर उस योग्यता को लाने का प्रयास करें शिष्य के रूप में। फिर हम आगे चलते हैं, अभी इस भगवद्गीता में आखिर क्या ज्ञान है। अभी तक दो सेशन तो केवल उसको ABCD भगवद्गीता का समझने का तरीके में ही चला गया है, क्योंकि बहुत जरूरी है। अभी हम प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा से भगवद्गीता के अंदर जो ज्ञान दिया है उसको सुनना। तो हमारा आज का विषय रहेगा कि हमारे शास्त्र के अनुसार और विशेष रूप से भगवद्गीता के अनुसार आज का विषय रहेगा हम कौन हैं, भगवान कौन है। ये दो विषय हम आज लेंगे। तो सबसे पहले अपने को देखें कि हम कौन हैं। भारतवर्ष में अधिकतर कम से कम कहने को तो सब जानते ही हैं अधिकतर लोग कि हम कौन हैं, बताएंगे आत्मा है। पर जो हम कह रहे हैं हम आत्मा हैं, क्या वास्तव में हम समझे हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, या केवल रट लिया है हम आत्मा है, रट लिया है हम आत्मा है। क्या वास्तव में आत्मा के स्तर पे हम काम कर पा रहे हैं, आत्मा को क्या चाहिए ये जानते हैं, आत्मा का कर्तव्य क्या है जानते हैं। तो ये विषय थोड़ा गहराई में हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये महाभारत के युद्ध में जब वो विषम स्थिति उत्पन्न हो गई तो ये ज्ञान देना जब प्रारंभ किया तो अर्जुन बहुत प्रकार के तर्क कर रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं अपने स्वजनों को कैसे मार सकूंगा। उस पर उनको दया आई और उसने कहा ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, अपनी राज्य सुख के लिए अपने ही स्वजनों को मार देना, स्त्रियां कुलुषित हो जाएंगी, वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी, इस प्रकार से अनेक तर्क अर्जुन ने दिए। लेकिन अर्जुन ने फिर भगवान की शरण ली कि मैं ये सब बोल तो रहा हूं पर मुझे पता है ये सब बकवास है, जो भी मैं तर्क दे रहा हूं वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, इसलिए कृपया करके अभी आप बताइए कि वास्तविकता क्या है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ करते हैं, अशोच्यान अन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासुन गतासुंश नानु शोचंति पंडिता। अरे अर्जुन तुम बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, पर तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। तुम मूर्ख हो, वैसे तुम बात बड़ी बड़ी करते हो पर हो तुम मूर्ख। डांटते हैं अर्जुन को, क्यों? न त्वेवा हम जातु नासुम न तम नैम जनादिपः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं। अर्जुन तुम जानते नहीं हो कि तुम कौन हो, और ये स्वजन जो तुम्हें कह रहे, जो तुम जिनको स्वजन कह रहे हो वो कौन है? तुम अज्ञानता में बोल रहे हो। ना तो मैं, ना तो तुम, ना तो ये सभी राजा जो यहां एकत्रित हैं, कभी ऐसा समय था जब हम नहीं थे, और ना कभी ऐसा समय आएगा जब हम नहीं रहेंगे। फिर आगे बताते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र ना मुह्यति। जिस प्रकार से इस जीवन में हम अलग अलग शरीर बदल रहे हैं, एक बालक का शरीर, उसके बाद युवावस्था का युवा शरीर, और उसके बाद वृद्धावस्था का शरीर, उसी प्रकार देहांत होने पर एक और शरीर हम धारण करते हैं, और जो धीर व्यक्ति है वो इस देहांतरण को लेकर के परेशान नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आज हमारे विद्यालयों में बच्चों को जो ज्ञान दिया जा रहा है, यही दिया जा रहा है कि हम शरीर हैं, हम रसायनों के बने हुए एक थैले हैं और कुछ नहीं है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि सभी रसायनों का मिश्रण है जो हम हैं और कुछ नहीं है। आज आप किसी विज्ञान के किसी इस छात्र से पूछिए, आत्मा? ये सब बकवास है, आत्मा आत्मा कुछ है नहीं, ये किसने देखा है, हम तो सभी केमिकल्स के बने और क्या है। तो हम दोनों चीजों में थोड़ा देखेंगे कि जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम मात्र शरीर हैं, हम मात्र रसायनों के बने और कुछ नहीं है, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, सब भौतिक तत्वों का बना हुआ है और कुछ नहीं है, ये सही है, या वास्तव में हम इस भौतिक तत्वों से अलग आध्यात्मिक कण, आध्यात्मिक आत्मा है, ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपके किसी मित्र का या घर के संबंधी का एक्सीडेंट हो जाए, वो कार चला रहे थे, बहुत महंगी कार थी, बहुत महंगी टोयोटा या कुछ भी, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जिसकी कीमत थी कार की, एक्सीडेंट हो जाए और आपका मित्र या आपका सगा संबंधी घायल हो जाए, तो सबसे पहले आप किसकी मरम्मत, किसका इलाज कराने की इच्छा करेंगे? सबसे पहले कार को गैराज में ले जाएंगे जो 20 लाख की है, या वो जो आपका मित्र या सगा संबंधी उसको आप हॉस्पिटल ले जाएंगे? तो सबका उत्तर क्या होगा? जो अपना सगा संबंधी है, पहले कार को छोड़ करके पहले उसे जाकर के दाखिल कराएंगे अस्पताल में। तो यदि हम ये माने कि हम केवल रसायन हैं, तो साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया है कि अपने शरीर के अंदर जितने भी रसायन हैं, यदि उनको बेच दिया जाए मार्केट के अंदर, तो उसका मूल्य केवल 150 रुपए के आसपास मिलेगा। तो अगर हम केवल रसायन हैं, तो कहां तो 20 लाख या 15 लाख की कार है, और कहां ये 150 रुपए का एक शरीर है। तो क्यों हम पहले इसकी मरम्मत, इसकी इलाज कराने के लिए जाते हैं, फिर पहले कार की देखभाल करनी चाहिए? आदमी को बाहर निकाल के छोड़ो, पहले कार को देखो। लेकिन ऐसा नहीं करते, क्योंकि अंतःकरण में हम सभी जानते हैं, अंतःकरण में हम सभी जानते हैं कि इस शरीर के अंदर कौन है? आत्मा है। इस शरीर के अंदर आत्मा है, यह हम सबको अंदर से विश्वास है। और जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो हम सभी क्या कहते हैं, क्या विलाप करते हैं? चला गया, देहांत हो गया, देहांत हो गया, देहांतर हो गया, चल बसा। इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट अवे, हर भाषा में बोलते हैं, उससे हम रोते हैं, वो हमें छोड़ के चले गए। तो उस समय हमको अनुभूति होती है कि कुछ चीज हमको छोड़ के चली गई है, शरीर तो वहीं पड़ा है लेकिन कुछ चीज हमको छोड़ करके चली गई है, सबका साधारण अनुभव है। इसके लिए कोई पंडित बनने की जरूरत नहीं है, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में फिजिक्स में। ये साधारण सबकी अनुभूति है कि जब कोई व्यक्ति देह छोड़ता है तो हमें अनुभव होता है कि किसी ने ये देह छोड़ दिया है, कुछ चीज यहां से निकल कर चली गई है जो पहले तक थी। और बहुत सरलता से भगवान समझा रहे हैं, लेकिन इतने मूर्ख हैं ये वैज्ञानिक गण, इतनी सरल चीज नहीं समझते हैं। अहंकार है क्योंकि, इसलिए भगवान से ईर्ष्या है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं, अरे जैसे आप इस समय अनुभव कर रहे हैं कि आप शरीर बदल रहे हैं, तो इसका मतलब आप शरीर से अलग हैं। तो हम कैसे अनुभव कर रहे हैं कि हम शरीर हैं? आप सब एक मिनट के लिए सोचिए, जब आप 10 साल के थे, 12 साल के थे, पहली दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ते थे, दो मिनट के लिए ऐसा कोई संस्मरण याद कीजिए। सबसे पहले जब छोटे छोटे जब आप थे, जब आपको संस्मरण याद है, कुछ आपका कुछ अनुभूतियां आपको अभी तक याद हैं, सब पहुंच गए वहां पर? बहुत छोटे थे जब आप, बहुत छोटे, अभी भी आपको वो संस्मरण याद है, वो अनुभूतियां जो आपने की थी, कभी कोई बहुत डर लगा हो आपको, कभी आपको बहुत आनंद आया हो, बहुत सुखी हो, कभी आप आज भी आप वो अनुभूति याद कर सकते हैं कि हाँ उस समय कितना आनंद आया था। तो इसका मतलब जो वो अनुभव करने वाला व्यक्ति है, जो उस समय जिसने वो आनंद या दुख अनुभव किया था, आज भी वही व्यक्ति है वो, आप आज भी वही हैं, तभी तो आप समझ पा रहे हैं कि हाँ मैंने उस समय ये अनुभव किया था। यानी आप वही हैं सेम, लेकिन उस समय का शरीर और आज का शरीर आपका अलग अलग है। उस समय बहुत छोटा शरीर था, आज एक अलग शरीर है, शरीर बदल रहा है, लेकिन हम वही हैं। हम अपनी देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि शरीर बदल रहा है, हमारा शरीर धीरे धीरे बदल रहा है, इसलिए हमको एकदम से अनुभूति नहीं होती है। लेकिन हम जब आईने में देखते हैं, कभी कभी जब पहली बार देखते हैं कि बाल सफेद हो गया, तो तुरंत हमको झटका लगता है, अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ये मेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है, मेरे दांत गिर रहे हैं। तो यानी कि हम अपने शरीर को बदलता हुआ अनुभव कर रहे हैं, यानी कि अनुभव करने वाला अलग है और ये शरीर अलग है, एक देखने वाला है और देखने की चीज है, दोनों अलग अलग होंगे तभी तो हम देख सकते हैं किस चीज को। तो हम देख रहे हैं कैसे हमारा शरीर बदल रहा है समय के चलते, यानी कि हम इस शरीर से अलग हैं, हम इस शरीर को देखने वाले हैं, ना कि हम खुद शरीर हैं। हम खुद शरीर नहीं है, बल्कि हम शरीर के परिवर्तन को अनुभव करने वाले हैं। बचपन के शरीर, जन्म जवानी का शरीर, बुढ़ापे का शरीर, जैसे जैसे बदल रहा है, हम उसको अनुभव, उसको देखने वाले हैं। जैसे आप खिड़की में बैठ जाएं और वहां से देखते रहें, लोग जा रहे हैं, आए और फिर चले गए, आए चले गए, तो आप अलग हैं और वो लोग अलग हैं, तभी तो आप देख पा रहे हैं, तभी तो आप उनको अनुभव कर पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम साधारण अनुभव से सब समझते हैं अंतकरण में कि हम अपने शरीर को बदलता हुआ अनुभव कर रहे हैं। तो स्पष्ट है कि शरीर और हम एक नहीं है, ये शरीर बदलता रहता है। तो ये बहुत साधारण तरह से हम समझ सकते हैं, और इसकी पुष्टि भगवद गीता में अनेक अनेक श्लोकों में भगवान बताते हैं, समझाते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गणाति नरोपराणि तथा शरीराणि जीर्णन्यानि संन्याति नवानि देही। शरीर की तुलना भगवान करते हैं एक कपड़े से, जैसे फटा पुराना होने पर हम एक कपड़ा बदल कर नया कपड़ा धारण करते हैं, उसी प्रकार हम ये शरीर पुराना होने जाने पर नया शरीर धारण करते रहते हैं। तो सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान का प्रारंभ होता है इस ज्ञान से कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, एक देह है और एक देही है, एक शरीर है और एक शरीर को धारण करने वाला है, ये दो अलग अलग वस्तु हैं, एक नहीं है। सबसे पहले ये जानकारी हमको स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। नासतो विद्यते भावो, ये शरीर का अंतवंत ही में देहा, ये शरीर का हमेशा से अंत होता है, इसका हमेशा से जन्म होता है। लेकिन इसके विपरीत अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, जो आत्मा है ना तो उसका कभी जन्म होता है, ना तो कभी उसका बुढ़ापा होता है, ना तो कभी उसका मरण होता है। आत्मा शाश्वत है, ये शरीर नाशवान है, ये अंतर स्पष्टतः हम सबको पहले समझ में आना चाहिए। ये भगवद गीता का प्रथम ज्ञान है। तो और ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो जीवन में क्रांति लाने वाला ज्ञान है। यदि किसी व्यक्ति को पूर्ण विश्वास हो जाए, पूर्ण श्रद्धा हो जाए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो आप सोचिए कि पूरे जीवन का दृष्टिकोण बदल जाए। क्योंकि यदि हम ये समझ रहे हैं कि हम शरीर हैं, तो फिर शरीर की आवश्यकताएं पूरा करने में ही पूरा जीवन लगाएंगे। शरीर को जिस चीज में आनंद मिलता है वही चीजें करेंगे। लेकिन यदि हम समझ गए हैं कि हम आत्मा हैं, तो फिर हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है तो मुझे क्या चाहिए, यानी आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा क्या है, आत्मा का संबंधी कौन है, आत्मा की खुराक क्या है, ये प्रश्न हम लोग पूछना शुरू कर देंगे और अपने जीवन को इस प्रकार से ढालेंगे कि न केवल इस शरीर की देखभाल करें जो कि मात्र एक वस्त्र है, यंत्र की तरह है, बल्कि उस यंत्र में बैठा हुआ जो आत्मा है, जो हम हैं, जो हमारी वास्तविकता है, उसके लिए हम ध्यान देंगे, अधिक ध्यान देंगे शरीर से। पर आज क्योंकि समाज के अंदर यह ज्ञान नहीं है, सब अपने को शरीर माने बैठे हैं, इसीलिए सब लोग पूरा जीवन केवल इस शरीर की देखभाल में निकाल देते हैं, जो कि जानवर भी करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है यस्यात्म बुद्धि कुणपेत धातु के, जो कफ पित्त वायु से बने इस भौतिक शरीर को ही स्वयं मानता है वो जानवरों से अधिक श्रेष्ठ नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार समाज के अधिकतर लोग वास्तव में जानवर ही हैं, क्योंकि वो अपने को शरीर माने बैठे हैं, पूरा जीवन शरीर की ही देखभाल में निकाल रहे हैं। तो भगवान स्पष्टता बताते हैं ये शरीर बना है 8 तत्वों का, भूमि रपो नल वायु खम मन बुद्धि रे वचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भगवान बताते हैं ये जो शरीर है ये तो 8 तत्वों का, भौतिक तत्वों का बना है। भूमि अप जल, भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु और आकाश, ये स्थूल तत्व है 5। और उसके ऊपर 3 सूक्ष्म तत्व हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 भौतिक तत्वों का मिलकर के ही शरीर बना है। लेकिन अपरयमितस्तु अन्यम विद्धि प्रकृतिम में पराम जीव भूता महाबाबो ययेदम धार्यते जगत। इससे ऊपर अपरयम, इससे परा एक और प्रकृति है मेरी, परा प्रकृति, जो जीव से बनी है, जो आत्माओं से बनी है, जो इस शरीर का धारण करती है। तो भगवान बता रहे हैं कि उनकी एक तो ये भिन्न प्रकृति है, भौतिक तत्वों की बनी प्रकृति है जो 8 तत्वों की बनी है, भूमिर अपनल वायु खम मन बुद्धि अहंकार। और इसके ऊपर एक भगवान की अन्य शक्ति है, अन्य प्रकृति है, जिसे भगवान बताते हैं परा प्रकृति। तो वो परा प्रकृति आत्मा, आत्माओं से बनी है। तो स्पष्टतः 2 चीजें हैं, एक आत्मा है और एक ये शरीर है। तो अभी ये जान लेने के बाद आत्मा के कुछ थोड़ा सा इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम देखें तो आज वैज्ञानिक गण भी धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि हाँ शरीर से अलग कुछ है। तो थोड़ा सा इस बारे में 5 मिनट जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनके लिए, वैज्ञानिक दृष्टि से इंटरेस्टेड हैं, तो एक है नियर डेथ एक्सपीरियंस। एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सुबोन, बहुत बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने अध्ययन किया है कि जब व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है, कोमा स्टेज में पहुंच जाता है और उसको सांस मशीनों के द्वारा दोबारा से उसको बचा लिया जाता है, तो ऐसे मरीजों से उन्होंने पूछा कि जब तुम कोमा स्टेज में थे, कोमा मतलब बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया था, तब आपको कुछ याद है क्या हुआ? तो उन्होंने सब वो लिखा और अनेक अनेक मरीजों ने बताया कि हमको उस समय इस मशीन पर रखा गया, हमको यहां ले जाया गया, स्पष्ट उन्होंने उसका विवरण दिया। अपनी इस खोज, अपनी इस अध्ययन के बाद डॉक्टर सुबोन ने एक मंतव्य दिया जो सब बड़ी बड़ी मैगजीन्स के अंदर, मेडिकल मैगजीन्स के अंदर और अखबारों में सब में प्रकाशित हुआ, कि मुझे लगता है मृत्यु के समय में एक चीज इस बुद्धि से अलग हो जाती है जिसे शायद आत्मा कहते हैं जो कई धर्म विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार से आज वैज्ञानिक गण धीरे धीरे नतीजे पहुंच रहे हैं कि सब कुछ शरीर नहीं हो सकता, भौतिक नहीं हो सकता, कुछ अलग एक और चीज है। उसी प्रकार से एक और साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर स्टीवन जॉनसन, डॉक्टर स्टीवनसन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया अमेरिका में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, पुनर्जन्म के 20 स्थापित केस। तो ऐसे देखा है कि कई बार बच्चों को अपना पुनर्जन्म का याद रहता है, वो कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके बच्चे कौन थे, तो वो उन्होंने पता, उन्होंने सब स्टडी किया और देखा कि ऐसे निश्चित ऐसे केस होते हैं जब कुछ लोगों को अपनी पुनर्जन्म की याद रहती है। तो पुनर्जन्म की याद रहने का अर्थ ही यह है कि कोई चीज है जो पुनर्जन्म से इस जन्म में आती है, शरीर तो जल के भस्म हो गया था लेकिन कोई चीज है जो रहती है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम देखें तो इस नतीजे पर हम पहुंच रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो बहुत आधारभूत ये ज्ञान है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो अभी आत्मा के कुछ विशिष्ट लक्षणों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, आत्मा के लक्षण क्या है, आत्मा के गुण क्या है। तो आत्मा के लक्षण है चेतना। हर व्यक्ति जानता है एक मृत शरीर में और एक जीवित शरीर में क्या अंतर है। हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया, चेतना के आधार पर। जब व्यक्ति की चेतना बिल्कुल खत्म हो जाती है, डॉक्टर टेस्ट करते हैं, पहले चुटी काटते हैं, अगर आदमी को दर्द होता है तो समझते हैं अभी जिंदा है, चेतना है। फिर चुटी काटने से भी आदमी बोल नहीं रहा, नाक के आगे रुई रखते हैं, थोड़ा सा भी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है देखते हैं, ऐसी चेतना को देखते हैं अलग अलग स्तर से। और अगर चेतना का कोई साइन नहीं है, कोई निशान नहीं है चेतना का, तो व्यक्ति को मृत घोषित किया जाता है। तो चेतना लक्षण है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आत्मा है कि नहीं है। आत्मा के अन्य गुण हैं कि आत्मा अलग अलग शरीर बदलता है। जब एक शरीर खराब हो जाता है दूसरा शरीर बदलता है। फिर आत्मा का अन्य एक लक्षण है जो बहुत ही रुचिकर है, जो एक बड़ा विषय है, क्या आत्मा का स्वरूप होता है या आत्मा एक प्रकाश की तरह से होता है बस, उसका कोई अपना रूप नहीं होता है। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, आत्मा कोई अपनी आकृति नहीं है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आत्मा का स्वरूप है पर वो भौतिक नहीं है, वो भौतिक तत्व का नहीं है, वो आध्यात्मिक है। वास्तव में आत्मा का रूप है तभी ये सब भौतिक जगत में हर चीज का रूप है, क्योंकि भौतिक चीज स्वयं कभी रूपमान नहीं होती है। जैसे ये कुर्ता हम पहने तो कुर्ते के अंदर भी दो हाथ बनाने पड़े, क्यों, क्योंकि कुर्ता जिसको ढकने वाला है ये शरीर, इसके दो हाथ हैं, इसीलिए कुर्ते में भी दो हाथ बने, नहीं तो कपड़े का अपना कोई दो हाथ नहीं थे कुर्ता बनने से पहले, पर क्योंकि इस कपड़े को ढकना था शरीर को और उस शरीर में दो हाथ थे इसलिए इस कुर्ते में भी दो हाथ बनाने पड़े। उसी प्रकार से ये जो भौतिक तत्वों का बना हुआ शरीर है, पृथ्वी जल आकाश, इसके तो कोई हाथ पैर नहीं है, पर जब इस मिश्रण को, भौतिक मिश्रण को आत्मा को ढकना पड़ा तो इसमें ये हाथ पैर बने। तो साधारण कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं कि आत्मा का स्वरूप होना चाहिए, तभी आवश्यकता है इस भौतिक शरीर को, ये रूप इसका तभी आया है। और जैसे ही आत्मा निकल जाती है दोबारा से ये मिट्टी मिल जाता है शरीर, दोबारा से इसका रूप खत्म हो जाता है। जब आत्मा अंदर रहती है तब तक रूप रहता है, बनता है, और जब ये आत्मा निकल जाती है तो रूप भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आत्मा का स्वरूप है लेकिन वो दिव्य है, वो भौतिक नहीं है। उसको समझने का तरीका, देखने का तरीका आध्यात्मिक तरीके से है, भौतिक दृष्टि से नहीं है। और आत्मा हृदय के एरिए में, हृदय देश में वास करती है और वहां से सभी शक्ति का संचारण होता है। तो आत्मा का गुण है चेतना। तो हमारे शरीर में जो चेतना होती है, हम सबको जो अनुभूति होती है कि मैं हूं, मैं यहां इस समय बैठा हूं, ये जो अनुभूति है ये है चेतना, और इसका कारण है आत्मा की उपस्थिति। अभी फिर हम आगे चले तो एक है आत्मा और फिर एक है परमात्मा। तो शास्त्र में दो प्रकार की आत्माओं को बताया गया है, एक आत्मा और एक परमात्मा, तो शब्दों से ही साफ है कि दो चीजें हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। परम मतलब परम सुप्रीम। तो इस विषय में भगवद गीता में और हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है कि दो प्रकार के इस भौतिक शरीर के अंदर दो प्रकार के जीव हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है, दोनों हृदय के प्रदेश में स्थित हैं। और दोनों में अंतर क्या है, आत्मा की चेतना केवल इस शरीर तक संबंधित है, सीमित इस शरीर तक सीमित है, पर परमात्मा की चेतना केवल एक शरीर में नहीं बल्कि सभी जगह सभी के शरीरों तक सभी के शरीरों में व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता बताते हैं, क्षेत्रज्ञ चापि माम सर्व क्षेत्रेषु भारत। आत्मा केवल अपने शरीर को जानने वाला है, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र मतलब शरीर, शरीर को जानने वाला आत्मा, और एक और जानने वाला इस शरीर को परमात्मा, जो न केवल इस शरीर को जानता है बल्कि सब शरीरों को एक साथ जानता है। क्षेत्रज्ञ च अपि माम सर्व क्षेत्रेषु भारत, सभी क्षेत्रों को जानने वाला वो मैं, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, परमात्मा के रूप में हर जीव के अंदर कण कण में विराजमान हूं। उसी प्रकार से कठ उपनिषद मुंडक उपनिषद में तुलना की है कि आत्मा परमात्मा ऐसे ही है जैसे एक वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षी हैं, एक पक्षी उस वृक्ष के फलों को खाने में आसक्त है और दूसरा पक्षी उसमें आसक्त नहीं है, बल्कि मित्र रूप में उपद्रष्टा अपने मित्र के क्रियाकलापों को देख रहा है और उसे कार्य करने की परमिशन दे रहा है, उपद्रष्टा अनुमंता। तो इस रूप से परमात्मा को बताया है कि आत्मा का मित्र रूप में परमात्मा हर जीव के हर शरीर के साथ, हर शरीर के अंदर आत्मा के साथ विद्यमान रहता है और उसका कार्य है उपद्रष्टा अनुमंता, वो देखने वाला है, विटनेस, और अनुमंता अनुमति प्रदान करने वाला है, इच्छाओं के अनुसार उसके अनुमति प्रदान करने वाला है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो इस प्रकार से ये दो चीजें हैं, आत्मा है परमात्मा है, आत्मा केवल इस शरीर का मालिक है पर परमात्मा सब शरीर का मालिक है। जैसे एक सरकार है तो उसके अंतर्गत जो नागरिक हैं उनको सरकार एक क्षेत्र एक जमीन का टुकड़ा देती है, तो वो उस जमीन का मालिक हुआ, पर सरकार वास्तव में वो उस जमीन का वास्तविक मालिक है, वास्तव में वो जमीन सरकार की होती है लेकिन सरकार ने इस समय आपको दी हुई है, हा? तो वास्तव में जो मालिक है वो सरकार है और आप उस सरकार के अंडर में उसके मालिक हैं। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने दिए गए घर के विषय में जान सकता है, पर सरकार को सबका नक्शा, यहां ये है यहां ये है, सबके विषय में जानकारी होती है। तो इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा में जो भेद है वो हमें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि दोनों चीज एक नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, सब एक ही है। तो सब एक है तो जो आज मुझे अनुभव हो रहा है वो आपको भी अनुभव होना चाहिए, मेरी प्रगति से आपकी प्रगति होनी चाहिए, मेरी अधोगति से आपकी अधोगति होनी चाहिए, मेरे सुख दुख आपके सुख दुख होने चाहिए। पर हम देखते हैं हर व्यक्ति अलग अलग है, आज जो मेरा अनुभव इस समय हो रहा है वो आपका अनुभव से अलग है। कोई व्यक्ति हो सकते हैं बहुत दुख में हो, घर में कुछ परेशानी है, कोई दूसरा व्यक्ति सुखी है, तो चेतना सबकी इस समय अलग अलग स्तर पर है। तो स्पष्ट है कि सब अलग अलग हैं, हम अलग अलग व्यष्टि आत्माएं हैं, हम सब एक मिले जुले नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी इस बात की पुष्टि करते हैं, सभी शास्त्रों में इसकी पुष्टि हुई है, नित्यो नित्य नाम, एक नित्य और अनेक नित्य, भगवान एक और हम अनेक आत्माएं, चेतनस चेतना नाम, वो एक चेतन और हम अनेक छोटी छोटी चेतनाएं, एक हो बहु नाम, वो एक भगवान एक और हम बहु बहुत सारे, एक हो बहु नाम यो विदधाति कामान, वो एक हम सबकी आवश्यकताओं को इच्छाओं को पूर्ति करने वाले हैं। तो इस प्रकार से दो अलग अलग चीजें बताई हैं। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मुक्ति के बाद आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है, लेकिन इसकी पुष्टि भी शास्त्रों में नहीं होती है। आत्मा और परमात्मा हमेशा से अलग रहती है, मुक्ति के बाद भी अलग रहती है। भगवान बताए हैं ममई वामशु जीव लोके जीव भूत सनातना, ये जो जीव हैं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये मेरे अंश हैं। और कैसे अंश है? सनातन है। आप जो भी जानते हैं सनातन का अर्थ क्या होता है, जिसका कभी आदि ना हो और जिसका अंत भी ना हो। तो भगवान बताएं कि जो अंश है ये सनातन रूप में अंश रहते हैं। भगवान नहीं बताए कि ये अंश मेरे में विलीन हो जाते हैं। अर्जुन मुक्ति के बाद भगवद्गीता ज्ञान प्राप्त करने के बाद और मुक्ति के बाद भगवान के लीन नहीं हो गया तो मुक्ति के बाद भगवान में लीन होना, हम सब लीन हो जाते हैं, ये बात सही नहीं है। भगवद्गीता में बताया गया है कि जो आत्मा है जो आध्यात्मिक है वो अघुलनशील है, एक दूसरे में घुलती नहीं है। अक्लेद्यो, अक्लेद्यो मतलब अघुलनशील है, ऐसा नहीं कि सब एक दूसरे में घुल जाते हैं। तो ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए, आत्मा अलग है परमात्मा अलग है। तो कई लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है, क्योंकि अगर हम मान लें कि सब एक ही है तो फिर किसी की शरण में जाने की, किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा लगता है मन को, क्योंकि इस भौतिक जगत में सभी जीव सेवा नहीं करना चाहते हैं, सब भगवान बनना चाहते हैं, सब स्वामी बनना चाहते हैं। इसी बीमारी की वजह से तो भौतिक जगत में आना पड़ता है जीव को आध्यात्मिक जगत से। और जब तक यही बीमारी यही दुर्भावना रहती है कि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, तब तक हमें इसी भौतिक जगत में रहना पड़ता है। इसीलिए अगर हम ये मान लें कि हम ही भगवान हैं, हम सब भगवान बन जाएंगे, तो फिर सेवा का मतलब ही नहीं है। तो इस सबको अच्छा लगता है, हाँ ये अच्छी बात है, हम ही भगवान बन जाएंगे, हम भगवान में मिल जाएंगे, किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है, हाँ ये अच्छा लगता है। तो ये हमारी ईर्ष्या की वजह से होता है, भगवान की हम सेवा नहीं करना चाहते हैं। पर वास्तविकता यही है कि हम सब भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के अंश तो हैं, पर वो अंश कैसे हैं? हमेशा से भिन्न हुए हैं, सेपरेटेड हैं, मिले हुए नहीं हैं, अलग हैं। तो ममई वामशु वो समझना है। तो हम और भगवान, जीव और परमात्मा या जीव और भगवान गुणों की दृष्टि से एक हैं, पर घनात्मक दृष्टि से अलग अलग हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है, एक सोने की खान और एक सोना, सोने की बड़ी खान है उसमें बहुत सोना है, उसमें से हम थोड़ा सा सोना लेकर के एक अंगूठी बनाएं, तो वो जो अंगूठी का सोना है और वो जो खान का सोना है दोनों ही सोना है, गुण दोनों के सोने जैसे ही है, पर एक थोड़ा सा है और एक विभू है। समुद्र में से पानी लें अंजलि में हाथ में, दोनों एक से ही हैं गुण की दृष्टि से, वो भी खारा है समुद्र का पानी भी खारा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? सुनामी, हमारे हाथ में लिए पानी से सुनामी आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। पर वो समुद्र के अंदर जो पानी है वो इतनी बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न कर सकता है, इतनी तबाही कर सकता है। तो वो घनात्मक दृष्टि से अलग अलग है, वो विभू है भगवान और हम अणु हैं। तो हम समान भी हैं भगवान के और अलग भी हैं। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का शास्त्रों के द्वारा दिया गया विचार है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। जीव भगवान के समान भी है और अलग भी है, गुणों की दृष्टि से समान है, हमारे गुण भगवान के गुण एक से हैं, भगवान भी चिन्मय है हम भी चिन्मय हैं, भगवान भी चेतन है हम भी चेतन हैं, भगवान भी आनंदमयो आनंद में रहने की अभिलाषा रखते हैं हमारे अंदर भी वो गुण है, भगवान भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाले हैं हमारे अंदर भी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। पर अंतर किस चीज में है? भगवान विभू हैं और हम अणु हैं। भगवान की स्वतंत्र इच्छा शक्ति अपार है, उनकी इच्छा शक्ति होती है तो पूरी हो जाती है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। पर हम अपनी इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए भगवान पर निर्भर हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे एक गाय को खूंटे से बांध दें तो वो जहां तक उसकी रस्सी है, गाय की खूंटे से बंधी जहां तक गाय की रस्सी है, उस रस्सी के दायरे में तो गाय स्वतंत्र है, कहीं भी चल सकती है, पर पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, वो रस्सी के बाहर नहीं जा सकती है। उसी प्रकार से जीव स्वतंत्र तो है पर थोड़ी मात्रा में, पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, वो निर्भर है भगवान के ऊपर। तो इस प्रकार से ये भेद समझना बहुत जरूरी है आत्मा और परमात्मा में, दोनों एक हैं गुण की दृष्टि से, अलग हैं घनात्मक दृष्टि से। तो ये आत्मा परमात्मा जान लेने के बाद अभी प्रश्न आगे चले कि भगवान आखिर कौन है। तो बताया गया है शास्त्र में परम सत्य क्या है, साकार है कि निराकार है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, कई लोग परम सत्य को अंतिम रूप में निराकार मानते हैं और कई लोग परम सत्य को अंतिम रूप में साकार मानते हैं। तो ये भगवद गीता के समय से चला आ रहा है। भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पूछते हैं कि कई लोग आपको निराकार, परम सत्य को निराकार मानते हैं और कई परम सत्य को साकार मानते हैं, दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं और हमारे शास्त्रों में भी इसको बताया गया है। वेद तत्विदिश तत्व ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है परम सत्य को तीन स्तर पे समझा जा सकता है, एक है ब्रह्म, एक है परमात्मा और एक है भगवान। उदाहरण लें सूरज, तो तीन व्यक्ति हैं जो सूरज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहला व्यक्ति सूरज का ज्ञान केवल सूरज की रोशनी तक समझता है, उसका ज्ञान केवल सूरज से निकलने वाले प्रकाश तक सीमित है। तो वो सूरज की व्याख्या करता है, सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकाश है जो सभी जगह फैला हुआ है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसमें ऊष्मा होती है, इस प्रकार से वो सूरज की व्याख्या करेगा। एक दूसरा व्यक्ति है जिसका ज्ञान उससे अधिक उन्नत है, वो व्यक्ति सूरज का अध्ययन करता है और पाता है कि सूरज प्रकाश तो है ही, ऊष्मा तो है ही, पर इस प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत वो सूरज का वो ग्रह है, गोल जो दिख रहा है जहां से ये प्रकाश निकला है। तो वो सूरज की व्याख्या करता है, सूरज एक गोल आग का गोला है, इसकी आकृति है, ये आग का गोला है जिसमें से प्रकाश निकल रहा है। तो वो व्यक्ति का ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है, वो प्रकाश को भी जानता है और प्रकाश के स्रोत सूरज ग्रह को भी जानता है। तीसरा व्यक्ति का ज्ञान और अधिक उन्नत है, वो सूरज के अंदर सूर्य देव विवस्वान जो उस सूर्य ग्रह का संचालन कर रहे हैं उसको भी जानता है। वो व्यक्ति बताएगा सूरज क्या है, सूर्य विवस्वान एक देवता है जो संचालन कर रहे हैं इस आग के गोले का, जिसके द्वारा प्रकाश निकलता है जो सभी जगह विद्यमान है। तो इस प्रकार तीनों व्यक्ति ने एक ही चीज की अध्ययन, एक ही चीज का अध्ययन किया और एक ही चीज का वर्णन किया, पर अपने जानकारी के अनुसार, अपने ज्ञान की सीमा के अनुसार अलग अलग स्तर को उसको समझ पाए और समझा पाए। एक ही वस्तु का अध्ययन किया, एक ही वस्तु को समझा रहे हैं और गलत भी नहीं है। जो व्यक्ति कह रहा है सूरज प्रकाश है, हाँ सूरज प्रकाश भी है, पर वो उसका जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है उसका ज्ञान, क्योंकि वो ये नहीं जाना कि ये प्रकाश का स्रोत सूर्य ग्रह है। तो दूसरे व्यक्ति का ज्ञान अधिक पूर्ण है और तीसरे व्यक्ति का ज्ञान पूर्णतम है। उसी प्रकार से परम सत्य को तीन स्तर पर समझा जाता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति। पहला है ब्रह्म, निराकार निर्विशेष भगवान के शरीर से निकलने वाला प्रकाश जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, ये परम सत्य का समझने का सबसे निम्न स्तर है, प्रारंभिक स्तर है। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, ब्रह्म ज्योति है, वो वास्तव में परम सत्य की ही बात कर रहे हैं, गलत नहीं है, परम सत्य की ही बात कर रहे हैं, पर उनको केवल उस ब्रह्म ज्योति का ही ज्ञान है, उसके ऊपर का ज्ञान नहीं है। इस ब्रह्म ज्योति का उद्गम क्या है इसका उनको ज्ञान नहीं है। तो वो सही है लेकिन उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। और आगे जाए परमात्मा इति, कुछ और आध्यात्मवादी हैं जो परम सत्य की व्याख्या करते हैं कि परमात्मा है जो सब कण कण में सबके हृदय में विराजमान है, वो भगवान है परमात्मा। तो उसका ज्ञान अधिक उन्नत है, वो ब्रह्म को भी जानता है, ब्रह्म ज्योति ब्रह्म को भी जानता है और परमात्मा को भी जानता है, उसका ज्ञान अधिक पूर्ण है। लेकिन तीसरा व्यक्ति, तीसरा अध्यात्मवादी जिसका ज्ञान परमात्मा के स्तर से भी ऊपर है, जो जानता है कि ये ब्रह्म और परमात्मा का उद्गम होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से, उसका ज्ञान संपूर्ण है। तो तीनों में से तीन गलत नहीं है, पर उनके जानकारी का स्तर अलग अलग है। एक केवल ब्रह्म को जानता है, एक ब्रह्म को और परमात्मा को जानता है, और तीसरा ब्रह्म को भी जानता है, परमात्मा को भी जानता है, और इन दोनों के उद्गम भगवान जिनका रूप है दिव्य रूप, भौतिक नहीं दिव्य रूप, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानता है, वो तीनों को जानता है। तो इस प्रकार से हमको ये समझना है कि ये तीन अलग अलग एक ही परम सत्य को समझने के अलग अलग स्तर हैं। जैसे एक हाथी है, नौ अंधे लोग हैं, उनको आज तक उन्होंने देखा नहीं कि हाथी क्या होता है, आंख पे पट्टी बांध करके उनको छोड़ दिया, ये हाथी है अब ये बताओ हाथी कैसा है। तो एक ने जाकर के सूंड पकड़ ली, एक ने पैर पकड़ लिया, एक ने पूंछ पकड़ लिया, एक ने कान पकड़ लिया। जिसने पूंछ पकड़ी उसने बोला हाथी एक रस्सी की तरह से है, जिसने पैर पकड़ा उसने बोला हाथी एक थंबे की तरह से है, जिसने कान पकड़ा हाथी एक पर्दे की तरह से है। तो वो सभी लोग हाथी का ही वर्णन कर रहे हैं, पर क्योंकि आंख बंद है पूरी तरह से हाथी को नहीं देख पा रहे हैं इसलिए अपूर्ण ज्ञान है। और एक व्यक्ति जिसकी आंख खुली है वो देख रहा है कि जिसे ये रस्सी कह रहा है वो पूंछ पकड़े हुए है, जिसे थमला कह रहा है वो पैर पकड़े हुए है, और जिसे ये पर्दा कह रहा है वो कान पकड़े हुए है। वास्तव में हाथी इन सबसे अलग, उसका अपनी अलग आकृति है। तो उसी प्रकार से पूर्ण ज्ञान है भगवान को जानना। भगवान बताते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये ब्रह्म मेरे पर आश्रित है, इसका उद्गम मैं हूं। और भगवान बताते हैं परमात्मा का उद्गम मैं हूं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयदेश अर्जुन तिष्ठति सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट बताते हैं सबके हृदय में मैं कृष्ण, यानी जो साकार रूप में 5000 वर्ष पूर्व अवतरित हुए, दो हाथ द्वि हस्तधारी भगवान, वो जो बोलने वाले हैं वो कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं ही हूं जो सबके हृदय में विराजमान हूं। तो हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि परमात्मा वो भगवान का रूप है और ब्रह्म वही भगवान से उद्गम होता है, और भगवान श्री कृष्ण इन सबके उद्गम है, उद्गम स्रोत हैं। तो इसलिए परम सत्य को जानने के तीन स्तर हैं। भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं, पर साकार रूप से निराकार आता है, ना कि निराकार से साकार आता है। कई लोग सोचते हैं जब श्री कृष्ण या राम इस पृथ्वी पर आते हैं तो निराकार में से एक रूप धारण करके आते हैं, निराकार होता है, निराकार में से एक रूप धारण करके आते हैं। जैसे हम एक रूप धारण किए हुए, ऐसे श्री कृष्ण का भी एक भौतिक रूप था, राम का भी एक भौतिक रूप था। नहीं, इसकी पुष्टि शास्त्रों में नहीं है, भगवद गीता में भगवान बताते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम। जो लोग मुझे अव्यक्त रूप में से व्यक्त हुआ मानते हैं वो लोग अबुद्धयः, वो बुद्धिशाली नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। जो मुझे मानते हैं कि मैं पहले अव्यक्त था और अभी व्यक्त हो गया हूं, पहले निराकार था और अभी साकार हो गया हूं। भगवान बताते हैं अजोपि सन्न आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्न प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। मैं इस भौतिक जगत में जब आता हूं अपना स्वरूप में आता हूं, मैं माया के प्रभाव में हमारी आपकी तरह से बद्ध होकर के नहीं आते हैं, एक जड़ शरीर लेकर के नहीं आते हैं, हड्डी मांस का शरीर लेकर के नहीं आते हैं, दिव्य अपने स्वाभाविक शरीर में जिस रूप में वो आध्यात्मिक जगत में होते हैं उसी स्वरूप में आते हैं। भगवान का जब जन्म हुआ भागवत में हम देख सकते हैं चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्मा लिए मुकुट धारण किए हुए आते हैं, ना कि हमारे आपकी तरह रोते हुए नंगे आते हैं। तो भगवान का जन्म और हमारा जन्म अलग अलग है, इसलिए भगवान बताते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्ता दे हम पुनर्जन्म न इति मामेति सो अर्जुना। मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, हमारे जन्म कर्म दिव्य हैं, हम तो माया से वशित होकर माया की फटकार से जबरदस्ती हमें जन्म मिलता है, हमारी अपनी इच्छा से नहीं आते हैं। पर भगवान कह रहे हैं मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, जो इनको जान लेता है वो उसकी मुक्ति हो जाती है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाता है। तो ऐसा कोई भौतिक जगत में व्यक्ति है जिसका जन्म कर्म जान लेने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाए? पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा जन्म कर्म ऐसा है इसलिए वो दिव्य है। जिसके मात्र जन्म कर्म की दिव्यता को जान लेने से जन्म मृत्यु से मुक्ति हो जाए तो व्यक्ति वो खुद जन्म मृत्यु के चक्र में होगा? तो ये भ्रांति विचार नहीं होना चाहिए। तो अभी फिर प्रश्न ये आता है कि भगवान कौन है? अनेक अनेक देवी देवता हैं, शिव जी हैं, और आजकल तो हर एक जगह अलग अलग भगवान बन गए हैं, बहुत सारे भगवानों के अवतार आ गए हैं, हर साल में पता नहीं कितने अवतार निकलते हैं नए नए, आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर भगवान कौन है। हर दिन नए नए भगवान निकलते हैं अलग अलग नामों से, हम यहां पर नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो हम देखें कि वास्तव में भगवान कौन है। भगवान केवल मात्र किसी व्यक्ति के अपने को भगवान बोल देने से कोई भगवान नहीं बन सकता। मात्र कुछ चमत्कार दिखा देने से कोई भगवान नहीं बन सकता। ये सब शास्त्रों में से सीखना पड़ेगा कि भगवान की परिभाषा क्या है, और जो व्यक्ति उस परिभाषा में खरा उतरता है वही भगवान या अवतार कहलाने लायक है। किसी भी व्यक्ति को भगवान नहीं मान सकते हैं। तो भगवान का मतलब क्या है? भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब उनको धारण करने वाला। भग वान सर्व ऐश्वर्यों से पूर्ण, उसे भगवान कहते हैं। तो सभी ऐश्वर्यों को छह प्रकार से विभाजित, छह भागों में विभाजित किया है, छह अलग अलग प्रकार में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं वो छह? एक ऐश्वर्य है, एक भग है लक्ष्मी, संपत्ति, रिचेस इंग्लिश में बोले तो, ये एक ऐश्वर्य है धन संपत्ति होना। दूसरा यश, फेमस इंग्लिश में बोले तो फेमस यश होना, ये भी एक ऐश्वर्य है। तीसरा सौंदर्य, ये भी एक ऐश्वर्य है, बहुत अधिक सौंदर्य होना। चौथा ज्ञान, नॉलेज, ये भी एक ऐश्वर्य है। पांचवा शक्ति, स्ट्रेंथ, ये भी एक ऐश्वर्य है। और छठा त्याग यानी रिनंसिएशन, ये एक ऐश्वर्य है। भगवान वो है जिसके अंदर ये छह ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में एक ही साथ एक ही व्यक्ति के अंदर संपूर्ण मात्रा में उपस्थित हो, वो व्यक्ति भगवान है। जो व्यक्ति संसार की सभी संपत्ति का स्वामी है, जो व्यक्ति सबसे अधिक यशवान है, जो व्यक्ति सबसे अधिक सुंदर है, जो व्यक्ति सबसे अधिक बलवान है, जो व्यक्ति सबसे अधिक ज्ञानवान है, और जो व्यक्ति सबसे अधिक त्यागी अनासक्त है, ऐसा कोई संसार में जो व्यक्ति है जिसके अंदर ये सभी छह ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में है, वो व्यक्ति को भगवान कहते हैं। तो अभी जो भी तथाकथित भगवान आज प्रचलित हैं उन सबको ले आइए, आप लोग देखिए किसके अंदर कौन कौन सा ऐश्वर्य है, कौन व्यक्ति है जो कह सकता है कि सभी संसार की संपत्ति उसकी है, कौन कह सकता है कि संसार में उससे अधिक बलिष्ठ कोई नहीं है, कौन कह सकता है कि उसके अधिक सुंदर कोई नहीं है, कौन कह सकता है कि उससे अधिक यशपूर्ण कोई नहीं है, जितना यश उसका है उतना और किसी का नहीं है, और कौन कह सकता है कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, उससे अधिक ज्ञानवान कोई नहीं है, या उससे अधिक त्यागी कोई नहीं है। एक ही कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो सकता है पर जरूरी नहीं वो बहुत सुंदर हो, बहुत बुद्धिमान हो। कोई बहुत त्यागी तपस्वी हो सकता है पर वो जरूरी नहीं बहुत सुंदर हो। तो हम यदि देखें श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व जब अवतरित हुए, अवतरित अपने धाम से, उसे अवतरण कहते हैं, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आना, उन्होंने उनके जीवन में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि वो ये सभी छह ऐश्वर्यों में पूर्ण थे, भगवान, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। आप देखें रिचेस धन संपत्ति, भगवान श्री कृष्ण जब इस 5000 वर्ष पूर्व अवतरित हुए, ये हिस्ट्री है, तो उनकी 16000 तो रानियां थीं और हर एक रानी के लिए अलग अलग महल था, हर एक महल सोने हीरे मोतियों से जड़ा हुआ था, आइवरी के तो पलंग थे। हिस्ट्री में आज तक कोई और दूसरे व्यक्ति को ले आइए जिसके पास इतनी धन संपत्ति रही हो, 16000 महल, हर महल पूरी तरह से हीरे स्वर्ण से सुसज्जित, कौन व्यक्ति है जो उनके सामने आ सकता है? आजकल के जो भी कोई तथाकथित भगवान बोलने वाले हैं सामने आ जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया है भगवत गीता, इसके कंपैरिजन में है और कोई दूसरी पुस्तक? 5000 वर्ष से संसार के सभी लोग, अमेरिकन, रशियन, बड़े बड़े स्कॉलर्स, फिलोसफर्स इसे पढ़ते हैं श्रद्धापूर्वक। 5000 वर्ष से टॉप बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत बिकती हैं और फिर समय के हिसाब से चली जाती हैं, फिर दूसरी किताबें आती हैं। बहुत से दार्शनिक आए हैं, चले गए हैं, जिनका दर्शन था अभी चला गया। कौन सी पुस्तक है जो इसे कंपैरिजन में आए? भगवद्गीता जितना प्रचलित, बहुप्रचलित और बहुमान्य, सभी के द्वारा, सभी बड़े बड़े ज्ञान जानकार लोगों के द्वारा, फिलोसफर्स के द्वारा है कोई ज्ञान इतने लंबे समय से, 5000 वर्ष से आज भी प्रचलित, पूरी तरह से मान्य कोई ज्ञान किसी और कोई पुस्तक नहीं है। सौंदर्य, जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित थे तब हम वृत्तांत सुनते हैं, सब ब्रजवासी उनके लिए पागल थे, न केवल मनुष्य बल्कि पेड़ पौधे जानवर भी वृंदावन के सारे दिन भगवान से आकर्षित होते थे, भगवान को देख करके। इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कोई मिस यूनिवर्स है तो केवल मनुष्य ही उसके तरफ आकर्षित होंगे, कुत्ते बिल्ली नहीं होंगे, जानवर नहीं होंगे। पर श्री कृष्ण ही एक ऐसे हैं जिनकी तरफ आदमी, जानवर, पेड़ पौधे, देवता सभी उनकी तरफ आकर्षित हुए, सर्व आकर्षक। इसीलिए कृष्ण नाम दिया गया है, कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, सभी को आकर्षित करते हैं शक्ति। भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए 6 महीने के अंदर ही पूतना एक बहुत बड़ी राक्षसनी उनको मारने के लिए आई, उनका वध करने के लिए। 6 महीने का बच्चा कितना होता है, और इतनी बड़ी राक्षसनी का उन्होंने ऐसे हंसते हंसते वध कर दिया। जब उस राक्षसनी का वध किया, जो सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई थी, जब वो अपने वास्तविक रूप में आई तो उसका जो शरीर था 6 मील लंबा था, उसका शरीर था 6 मील लंबा, जिन्होंने 6 मास के छोटे से बालक ने खेल खेल में उसको दूध पिया और साथ साथ उसके प्राण भी खींच लिए। कौन आज तक ऐसा हुआ है 6 महीने की उम्र में जिसने ये काम करके दिखाया है? 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत जो आज भी है उसको कन की उंगली पर उठाया, और ऐसा नहीं कि उठाने के बाद कुछ तकलीफ हुई, हंसते हंसते। कोई भी जो आजकल का तथाकथित अपने को भगवान बोलता है, एक ईंट को उठा करके 7 दिन तक नहीं, 1 दिन तक क्या, 1 घंटे के लिए उठा के दिखाए। तो कंपैरिजन सोच समझ करके कीजिए, किसी को भी कहने से भगवान मत मान लीजिए। भगवान ने अपने इस जब तक इस पृथ्वी पर लीला की, हर दिन का खेल था बड़े बड़े असुरों का वध कर देना, एक नहीं जितने भी आए, हर दिन का आराम से खेल था, खेल खेल में मारते थे। आजकल तो ऐसे असुर भी नहीं है इतने महान महान, तो कहां शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, और कहां ये जो भी अपने को अवतार बोल रहे हैं, कहां है वो? तो इन सब त्याग, डिटैचमेंट, जब राष्ट्रीय यज्ञ हुआ युधिष्ठिर महाराज के लिए, सभी संसार के राजागण उपस्थित हुए और सबको अलग अलग सेवाएं दी गईं। किसी को गेस्ट्स को रिसीव करने की सेवा थी, किसी को खाना देखने की सेवा थी, अलग अलग सेवाएं थी। भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी सेवा ली? सभी आने वाले जो अतिथि हैं उनके चरण धोने की सेवा। जो साक्षात जो भगवान है, जो सबके नियंता है, वो इतने विनम्र हैं, अहंकारी नहीं है। तो इस आधार पे ये भगवान की परिभाषा पराशर मुनि ने दी है, पराशर मुनि के द्वारा ये भगवान की परिभाषा दी है व्यासदेव जी के पिता, कि ये 6 ऐश्वर्य से पूर्ण कोई व्यक्ति है तो वो भगवान है। और उसी प्रकार से अवतार हम कहें तो बहुत से लोग अपने को अवतार बोलते हैं, पर अवतार का भी परिभाषा है, अवतार के लिए शास्त्रों में उसका लेख उल्लेख होना चाहिए। भागवतम में सभी अवतारों का उल्लेख है जो हैं और जो होने वाले हैं, और उसी प्रकार से वो होते हैं। बुद्ध अवतार का उल्लेख है और उस प्रकार से हुआ, कल्कि अवतार का उल्लेख है, कलयुग के अंत में 4,27,000 साल बाद, ना कि अब। अभी कल्कि अवतार का समय नहीं है। हर एक अवतार का उल्लेख शास्त्रों में है, उसके आधार पर वो समझा जाता है। उनका केवल ना केवल नाम है बल्कि वो कब आएंगे, किस लिए आएंगे, कहां पर आएंगे, किसके द्वारा आएंगे, उनकी मां का नाम, पिता का नाम, सब विवरण शास्त्रों में होता है, जिसके आधार पर निश्चित किया जाता है जानकार लोग कि ये अवतार है कि नहीं। मन से किसी को अवतार नहीं मान सकते हैं, कुछ चमत्कार दिखा करके वो योगी हैं जो चमत्कार दिखा सकते हैं, वो योग विद्या है। अष्ट प्रकार की योग विद्याएं होती हैं। आदमी एक दूसरे का हृदय जान सकता है। बीमारियां ठीक करना तो बहुत छोटी बात है, वो तो डॉक्टर भी करते हैं, उसके लिए क्या भगवान मानने की जरूरत है। बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा अपने को तथाकथित भगवान मानने वाले हैं, पीसी सरकार का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े जादूगर हैं। वो एक बार उनके पास गए साधारण ड्रेस में, तो वो जो तथाकथित भगवान है वो बोले, क्या चाहिए, बोलो क्या मांगते हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे बंगाल के रसगुल्ले, बंगाली हैं पीसी सरकार, बहुत बड़े जादूगर हुए हैं, मुझे रसगुल्ले चाहिए बंगाल के। तो उन्होंने अपनी योग विद्या से तुरंत रसगुल्ले ला के रख दिए और पीसी सरकार ने वो खाए, बोले हाँ अच्छे हैं लेकिन बासी हैं, मैं आपको रसगुल्ले ला के देता हूं फ्रेश, ये लो अब इसे खाओ। तो वो चकित रह गए, बोले मैं भी जादूगर हूं, पीसी सरकार बोले, और आप भी जादूगर हैं, पर मैं अपने को जादूगर बोलता हूं और आप जादूगर होकर के अपने को भगवान बोलते हैं, यही अंतर आप में और मुझ में है। तो इसलिए आप सब लोग बुद्धिमान हैं तो कृपया करके सोच समझ करके अपने पत्नी को चुनने के लिए इतना ध्यान देते हैं, पति को चुनने के लिए, और कोई अपने को अवतार बोलता है, हम आज बन करके उसका अवतार मान लेते हैं, अपना पूरा जीवन उसके पीछे लगाते हैं, तो ये क्या बुद्धिमानता है। सोच समझ करके, समझ करके समझिए कौन व्यक्ति अवतार है, कौन व्यक्ति भगवान है। तो ये इस तरह से हम लोग समझने का प्रयास करें कि भगवान कौन है, शास्त्रों के द्वारा अवतार कौन कौन से हैं, और शास्त्रों का सभी का उल्लेख है, सभी शास्त्रों का यही सार है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। व्यास देव जी बार बार सभी शास्त्रों के माध्यम से, सभी महान जो आचार्य हुए हैं, शंकराचार्य, सभी लोग एक ही सुर में बोलते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम में जहां बताया गया है सभी अवतारों का वर्णन, वहां बताया गया है एते चौम से कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सब जो अवतार हैं ये परम सत्य की कला या कला विशेष हैं, अंश या तो अंश के अंश हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण साक्षात भगवान है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम, बहुत सारे ईश्वर हैं, ईश्वर मतलब नियंत्रक, नियंत्रण करने वाले, ईश्वर तो बहुत हैं, पर ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, जिनका रूप सच्चिदानंद है वो ईश्वर परम, परम ईश्वर कृष्ण है। उसी प्रकार से गोपाल तपानी उपनिषद, सभी वेदों में शास्त्रों का यदि सार है, और भगवद्गीता में तो भगवान स्वयं निर्धारित करते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से ऊपर और कोई नहीं है, अहम आदि ही देवानाम, सभी देवताओं का आदि स्रोत मैं हूं, शंभु इत्यादि सभी का विवरण बताते हैं भगवान स्वयं अपने आप से। तो फिर क्या संशय है, क्यों, क्योंकि शास्त्रों को अपने मन से हम पढ़ते हैं इसलिए भ्रमित हो जाते हैं। अगर परंपरा में आकर के ढंग से पढ़ेंगे, उस सभी शास्त्रों के सार को समझेंगे, तो एक स्वर में समझेंगे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो विष्णु तत्व है, जीव तत्व है और शंभु तत्व है। विष्णु तत्व मतलब भगवान श्री कृष्ण जो सभी अवतारी हैं, सभी अन्य विष्णु तत्वों के, वो विस्तार करते हैं अपना अलग अलग विष्णु तत्वों में, वो सब एक ही व्यक्ति अलग अलग रूप में है, उसके अंतर्गत आते हैं भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद बलदेव के रूप में उनका विस्तार होता है, उसके बाद संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और उसके बाद अलग अलग विष्णु चतुष्भुज रूप में जो विष्णु है, और भगवान श्री राम, नृसिंह, वराह, कुर्मा, ये सब जो है विष्णु तत्व है, ये सब एक ही व्यक्ति अलग अलग रूपों में है। लेकिन हम जीव हैं, जीव तत्व है, और इन दोनों के बीच में शंभु तत्व है, शिव जी है, वो ना तो जीव तत्व है ना तो विष्णु तत्व है, बीच में है। वो भगवान के वो रूप हैं जो इस भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते हैं, जैसे दूध और दही, खट्टा मिलाने से दूध परिवर्तित हो जाता है दही में, तो वो एक तरीके से दूध ही है पर उसका कार्य अलग है, अभी उसके गुण अलग है। तो उसी प्रकार से शंभु तत्व बीच में, ये बहुत विस्तार का विषय है जिसे हम इस क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जिस्ट आपको हमने शास्त्र के अनुसार देने का प्रयास किया है। तो आज की कक्षा में हमने देखा हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और परमात्मा हम सभी के साथ हृदय में विराजमान है। परम सत्य के तीन स्तर हैं, एक ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति, दूसरा परमात्मा, और तीसरा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। कल की कक्षा में हम लोग देखेंगे भौतिक प्रकृति क्या है, ये भौतिक संसार, भौतिक प्रकृति क्या है, उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, कर्म क्या है, कर्म के नियम क्या है, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, अलग अलग शरीर जो हमें मिलता है आत्मा को वो किस आधार पर मिलता है, अलग अलग योनियां 84 लाख योनियां मिलती हैं, किस आधार पर मिलती हैं, समय क्या है। तो भौतिक प्रकृति, जीव और समय, ये तीन विषय के ऊपर कल हम चर्चा करेंगे। आज हमने चर्चा की जीव और भगवान के विषय में, कल चर्चा करेंगे भौतिक प्रकृति, समय और कर्म के विषय में। हरे कृष्णा। अभी आप में से किसी भी सज्जन का या माता का कोई प्रश्न हो तो कृपया आप वॉल्यूम, तो आप कृपया करके प्रश्न पूछ सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। फिर ये पुस्तकें यहां पर प्रदर्शित हैं, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जिसका 80 भाषाओं में प्रकाशित होती है पूरे विश्व में, और ये यथारूप है भगवान श्री कृष्ण की बात ज्यों त्यों है, क्योंकि एक भक्त के द्वारा जो गुरु परंपरा में आए हैं उनके द्वारा दी गई है ये ज्ञान, अपने मन से बनाया हुआ ज्ञान नहीं है, सभी शास्त्रों का उल्लेख अंदर है, उनके आधार पर समझाया गया है, अपने मन की बात नहीं है। तो कृपया करके ये भगवद्गीता और अन्य छोटी पुस्तकें हैं वो आप ले सकते हैं, और एक मैगजीन है भगवत दर्शन, हर महीने जो प्रकाशित होती है बॉम्बे से, और हर महीने 10 रुपये यानी एक साल में 12 इशू 120 रुपये उसकी कीमत है, जिसके अंतर्गत लेख आते हैं भगवद्गीता, श्रीमद् भागवतम, और जो आजकल का वातावरण चल रहा है उसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझाने की प्रयास से, तो आप मैगजीन देख सकते हैं, और जो चाहें वो उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एक साल का, वो मैगजीन आपको आएगी। और छोटी पुस्तकें हैं 15 रुपये 10 रुपये, उन पुस्तकों को आप ले सकते हैं, और ये भगवद्गीता है 80 रुपये, इसको आप ले सकते हैं। हरे कृष्णा।